पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 59 श्लोक। इति शैव पुराणेषु कुटस्थ प्रविवेचितः जीवे सत्त्वादिरहितः केवल स्वयं प्रभा शिव। इति शैव पुराणेषु कूटस्थ प्रविवेचितः जीवे सत्त्वादिरहितः केवल स्वप्रभा शिव। स्वयं प्रकाश आत्मा, इन बातों का वर्णन 3 श्लोकों से पहले कर दिया गया, उसी का सार बता रहे हैं। उदाहरित पुराण वाक्यस्य तात्पर्य माह, जो आपने 3 पुराण वाक्यों का श्रवण किया था, 56, 57, 58 और अनुमान के द्वारा, उसी का सार बता रहे, तात्पर्य क्या। सही पुराणेषु, शिव पुराण में कूटस्थ का विवेचन किया गया है। वह कैसा है? जीवे सत्वादिरहित, उसमें जीवत्व सत्व कुछ भी धर्म नहीं है, न जीवपना न ईश्वरपना। जीवपना बोलते हैं कि मैं संसारी हूं, जन्मने वाला मरने वाला, बहुत अमीर बहुत गरीब, बहुत अच्छा आदमी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बहुत बड़ा महात्मा, इसे उपाधि है महात्मापना भी, है ना। एक कथा का सुना रहे थे, चार है ना, चार चीज उसमें हमेशा विनाशीपना लगा रहता है, चार, दृष्टि, सृष्टि, दृष्टि, इनके पीछे घूमती है भ्रष्टी, भ्रष्टी, दृष्टि आंख, क्या पता ये दृष्टि कहां जो है फिसल जाए, आंख नजर, वृत्ति, वृत्ति, और सृष्टि का ही कोई भरोसा नहीं। आपने बड़े परिश्रम करके अपना बड़ा भारी हवाई महल खड़ा किया, कोई भरोसा नहीं कब बिखर जाए, और ट्रस्टी, क्या पता कब जो है फिसल जाए, पैर फिसल जाए। तो तीनों के पीछे लगे जाती भ्रष्टी, भ्रष्टी परिक्रमा करती, तीन ही, चार नहीं, तीन। तो जीवत्व मतलब मैं अल्पज्ञ हूं, संसारी हूं, जन, हाँ, कि कब गिर जाए भरोसा नहीं। भ्रष्टि मतलब भ्रष्ट होना, गिरना, भ्रष्ट होना, गिरना। दृष्टि, सृष्टि, दृष्टि, भ्रष्टि, चार, तीनों के आगे पीछे घूमती भ्रष्टि, मतलब विचार से कब वैमत्य हो जाए, कब जो है कोई भरोसा नहीं, संवायक है ना। तो जीव मतलब अल्पज्ञ मैं हूं, जन्मने मरने वाला, ये जीवपना हो गया, कर्तापना भोक्तापना, और ईशत्व मतलब सर्वज्ञत्व हूं, सर्वांतर्यामित्व, ये सब, इन सारे उपाधियों से रहित केवल स्वप्रभकार स्वयं प्रकाश, वह शिव तत्व है, परमात्मा है, ऐसा वर्णन किया है इसी पुराण में। इत्येवं प्रकारेण सूत संहितादिषु पुराणेषु जीव ईश्वरत्वादि कल्पना रहित केवलो अद्वितीयः स्वप्रभः स्वयं प्रकाशः चैतन्य रूपः शिवः कूटस्थो विवेचितः इत्यन्वयः। सूत संहिता आदि जो ग्रंथ हैं, सूत संहिता बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं कि अष्टधा 18 बार आचार्य शंकर ने सूत संहिता का विचार करके तब शंकर भाष्य लिखा। अष्टधा सूतम समालोच्य चकार भाष्यम भाष्यकार। 18 बार सूत संहिता में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, विवेचन है, उनके आधार पर शंकर भाष्य लिखी गई। सूत संहितादिषु पुराणेषु जीवेश्वरत्वादि कल्पना, जीव ईश्वर का है। सूत संहिता बहुत मशहूर है आपको, व्यास जी की है, और पुराण 18 पुराण है ना, ये भी सब सूत संहिता से कहे जाते हैं अलग से, और सूत संहिता अलग से भी उपलब्ध होता है, बड़ा संकलित। हाँ, व्यास जी का, व्यास जी का। तो सूत जी को पढ़ाया ना, इसलिए सूत संहिता नाम पड़ गया, सूत जी उनके शिष्य थे, पढ़ाए थे। आगे देखो, वेद व्यास जी के रोम हर्षण उग्रसवा, दो सूत हैं, रोम हर्षण उग्रसवा, पिता पुत्र। तो आदि कहते भागवत तो पिताजी ने किया, रोम रोम हर्षण आधा उग्र श्रवा, हाँ शिष्य सोनक का भी नाम आता। वो कथा आती ना कि वो बलदेव जी घूमते घूमते बलराम जी गए, तो व्यास पीठ पर बैठे हुए थे, ऋषियों ने वहां पर उनको आसन दिया था, कथा श्रवण कर रहे थे, सबने तो नमस्कार किया, अभिवादन किया, परंतु सूत जी महाराज व्यास पीठ पर थे तो अपना नहीं उठे, उनको क्रोध आ गया, तो एक गुस्सा कर लेकर निमंत्रित करके छोड़ दिया, तो उनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। ऋषियों ने हाहाकार किया कि आपने बड़ा अनर्थ कर दिया, हमने इनको व्यास आसन दिया था, ये हमारी कथा कैसे पूरी होगी। तब जो है ना दाऊ जी ने कहा कि शास्त्रों में बात आती है, आत्मैव पुत्र रूपेण अजायत, आत्मा ही पुत्र रूप से सामने खड़ी होती है, वही आत्मा पुत्र रूप से सामने। फिर इनके पुत्र उग्र श्रवा जी अशेष कथा श्रवण कराएंगे। तो भागवत में उग्र श्रवा कथा आगे की सुनाते हैं, और इसके पर रोम हर्षण जी सूत, ये मूल भागवत में कथा है आपके, मूल भागवत की। चलिए जी, स्वयं प्रकाश है चेतन रूप शिव कुटस्थ, ऐसा विवेचन करके बतला दिया गया है। जीवे सत्वादि रहित तत्वम कुत इत्याशंक्य श्रुत्या तैर्मायिकत्व प्रदर्शनात् इत्याह। जीव और ईसत्वादि जो रहित है, कुत कैसे है, ऐसी आशंका होने पर श्रुति के द्वारा दोनों को माइक बता रहे हैं। जीवत्व माइक है, ईश्वरत्व माइक है, दोनों में अंतर है कि नहीं? जीवत्व जीव, ईश्वरत्व ईश्वर, इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर लगता है कि नहीं है? अंतर है क्या अंतर? ना वो नहीं पूछ रहा हूं, जीवत्व जीव, ईश्वरत्व ईश्वर। आप तो श्रद्धालु हैं, विश्वास कर लेंगे, पर कोई पूछेगा तो तर्क देना पड़े ना। व्याकरण में सूत्र है तस् भाव त्व तलौ, भाव अर्थ में, धर्म अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होता है ना। तो त्व प्रत्यय तो त्वांतम क्लीबम नपुंसक लिंग में पुलिंग में होगा, और तलंतम स्त्रीलिंग तल प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है, जैसे ग्रामता बंधुता जनता ये सब स्त्रीलिंग में है, और त्व होता है पुलिंग में नपुंसक में। तो जीवत्व है ना भाव अर्थ में, ईश्वरत्व भाव में, और जीव ईश्वर धर्मी हो गया, जैसे घट जो है ना धर्मी है, घटत्व धर्म है, उसका भाव है। ये सब छोटी छोटी बात भी समझ के रखना, मुझे तो लगता है एक जैसा है सब, एक जैसा नहीं। देखो जीवत्व व्यापक है और जीव एक व्यक्ति में सीमित है, घटत्व क्या है ना व्यापक है, मनुष्यत्व व्यापक है, पटत्व व्यापक है, पट एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो कितना भारी अंतर है। अंतर है, लगता है कि जैसा। आगे मायाभासेन जीवेसौ करोति तेषु तत्त्वतः मायिकावेव जीवेसौ स्वच्छौ तौ काच कुम्भव मायाभासेन जीवेसौ करोति तेषु तत्त्वतः मायिकावेव जीवेसौ स्वच्छौ तौ काच कुम्भवत् मायाभासेन जीवेसौ। यह जो माया है, माया आभास के द्वारा जीव ईश्वर को बनाती है, वही माया। माया क्या करती? आभास के द्वारा अज्ञान में प्रतिबिंबित चेतन हो गया आपका ईश्वर ना। वो बात सही है, अज्ञान में प्रतिबिंबित चेतन हो गया ईश्वर, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव। देखो अविद्या और माया बोलते ना अभासवाद से, सिद्धांत ले संग्रह में एक ये भी पक्ष है कि दोनों प्रतिबिंब है, जीव भी ईश्वर भी दोनों प्रतिबिंब है। इसको बोलते बिंबेश्वरवाद और प्रतिबिंबेश्वरवाद, इस नाम से है। जो खोजेगा वहां तो मिलेगा, बिंबेश्वरवाद में बिंब को ईश्वर माना है और प्रतिबिंबवाद में माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर। माया विद्या एक ही है, माया विद्या एक ही वचन, और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है ना। अनंतो वै वेद, अनंत वेद, अनंत शास्त्र है। इसीलिए एक बात हमेशा रखना चाहिए ध्यान में कि कोई भी शब्द एक अर्थ को नहीं, अनेक अर्थ को बताता है। इसलिए शास्त्रों का सिद्धांत है विपत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्य, हम शब्द वही है, विपत्ति से अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो यहां पर लेना दोनों प्रतिबिंब है, लिखा आभास लिखा ना, इसीलिए माया आभास, माया आभास तृतीय समास है। माया कर्तृक है, माया के द्वारा आभास से जीव एसो जीव इस दोनों को बनाती है। तो दोनों मायिक है, जीव भी ईश्वर भी दोनों मायिक है। करोति इति सुतत्वत, ऐसा श्रुतियों में सुना गया है। मायिकौ एव जीवेसो, दोनों मायिक है, माया कृत है। स्वच्छौ त, दोनों स्वच्छ हैं, कैसे? कांच और कुंभ के समान, दोनों स्वच्छ हैं। और जगत आपका अस्वच्छ है, अस्वच्छ जगत, जगत आपका मलिन है और जीव ईश्वर स्वच्छ है। इसमें ईश्वर ने ये तो हम लोग सुनते हैं, देखो गिरीश भाई कितना ऊपर पहुंच गए, शंका आप लोग कोई शंका करते ही नहीं, बिना शंका की थोड़ी बात आगे बढ़ती है। माया ईश्वर ने माया बनाई, ये हम लोग सुनते हैं बार बार, पर यहां लिख रहे कि माया ने ही ईश्वर जीव को बनाया है, और आगे एग्जाम्पल भी बहुत देंगे इस विषय में। तो इसको ऐसा समझना कि यह जो माया है ना, माया जब जगत की कर्तृक है, जगत की कर्तृक है, तो जीव ईश्वर को ही माया बनाती है। पर वहां जो हम पढ़ते हैं ना कि ईश्वर ने माया को बनाई, वहां तात्पर्य शुद्ध चेतन से है, ऐसा लेना। एक बार तो हम भी गड़बड़ में पड़ गए, भाई कैसी पंक्ति लगाई जाएगी, वहां शुद्ध चेतन है, यहां जो है ना वह आपका औपाधिक चेतन है। हां शुद्ध है, मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जो ईश्वर ने संकल्प किया, एको अहम् बहुश्याम, जैसे हमारे मन में संकल्प होता है ना, उसी इच्छा शक्ति का नाम माया है। तो गिरीश भाई का ऐसा अर्थ लगाना कि ईश्वर ने माया को बनाई कमलक शुद्ध चैतन्य संकल्प किया एको हम बहु श्याम, तो संकल्प शक्ति का नाम माया है। ब्रह्म ने ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म सृष्टि के प्रारंभ में निरुपाधिक ब्रह्म ने निर्विशेष ब्रह्म को इस विशेषता ने निर्विशेष ब्रह्म ने जब जीवात्माओं के अधिष्ठ से अधिष्ठ बोलते धर्माधर्म जीवात्माओं का आदेश मान लीजिए आप अपने घर में परिवार में बड़े मजे से पड़े हैं उम्र भी आपकी 60 वर्ष हो गई निश्चिंत एकदम शांत हैं सारा कारोबार आपने अपने पुत्रों पर छोड़ दिया बहू पर छोड़ दिया तो परिवार जब बड़ा है ना तो किसी ने कहा दादाजी आपका सामर्थ्य बहुत बड़ा है महंगाई आगे बढ़ने वाली है चार चार बच्चे चार चार पोते हो गए और चार बहू आएंगी 8 उनके भी आगे होंगे तो कुछ आप हम लोगों को प्रेरणा दीजिए सहयोग कीजिए। तो दादाजी क्या कहते अच्छा कोई बात नहीं है तो शांत बैठे परंतु उनकी प्रेरणा से न चाह करके भी दादाजी को अपने बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है न चाह करके भी अपने पुत्र पुत्र वधु नाती पोतों के इच्छा के लिए संकल्प करते हैं और संकल्प करके बंबई के बाहर जमीन लेते हैं ना ऐसे यहां पर शुद्ध ब्रह्म विशेष बैठा हुआ है। अब जैसे कि नाती पोता की इच्छा से आपकी प्रवृत्ति हुई खुद नहीं हुई आपकी ऐसे जीवात्माओं के अधिष्ठ से ये न्याय का मत भी है विधान का मत बराबर दोनों का है। महाप्रलय के बाद प्रत्येक जीवात्माओं का अदृष्ट अदृष्ट बोलते धर्माधर्म तो अदृष्ट के अनुसार परमात्मा में संकल्प हुआ कि भाई संसार का विस्तार करना चाहिए उसी का नाम माया है। ऐसा नहीं होता जब जीवात्माओं का अदृष्ट होगा जिस प्रकार से जब बछड़ा गाय के स्तन के पास पहुंचता है तो अपने आप दूध निकलने लग जाता ऐसे आपके अदृष्ट से परमात्मा के मन में संकल्प हुआ एकुवम बहुश्याम बहुत रूप में हो जाऊं इसी का नाम माया। तो वहां पर शुद्ध ब्रह्म से माया उत्पन्न हुई और यहां पर क्या है उस माया ने औपाधिक जीव ईश्वर को बनाया जो यहां लिखा है ना अब उस माया ने जो है ना औपाधिक ईश्वर को जीव को चिदाभास को बनाया ये यहां बता रहे तो दोनों में अंतर है ऐसी संगति लगाना। इत्येवं माया भासे न मतलब माया जो है ना भासे जीव ईश्वर को बनाती है दोनों मायिक हैं जीव और ईश्वर दोनों स्वच्छ हैं और जगत कैसा अस्वच्छ है मलिन है। जिस प्रकार से ग्रेनाइट के दीवार में सूर्य का प्रतिफलन होता है कांच में होता है पर मिट्टी के मकान में नहीं होगा ऐसे ही ये जो जगत है इसकी उपाधि मलिन है इसीलिए इसमें चैतन्य का प्रतिफलन नहीं हो रहा चैतन्य तो है मौजूद है। सूर्य उदित जब होते हैं तो उनका प्रतिबिंब जल में भी है कांच में भी है ग्रेनाइट में भी है और मिट्टी के दीवार में भी है पर मिट्टी के दीवार का दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उपाधि मलिन है। ऐसे जीव ईश्वर का उपाधि स्वच्छ होने से भासित होती है चेतनता की और मिट्टी का दीवार जैसे वैसे जगत अस्वच्छ होने से चैतन्यता की प्रतीति नहीं होती है। तो जो चैतन्य है ना वो जड़ में लकड़ी में भी ईंट पत्थर में भी है वो सामान्य चैतन्य है विशिष्ट चैतन्य बल्कि सामान्य चैतन्य है उसी बात को यहां बतला रहे। जीवे सौ अभासे न करोति माया च विद्या च स्वयमेव भवति। निसिंह उत्तर तापीय उपनिषद के मंत्र है कि वह जो माया विद्या है वह स्वयं ही जीव ईश्वर रूप को आभास से बनाती है। आभास मतलब कि जैसे कि दर्पण में मुख का आभास पड़ता है ऐसे यहां पर आभास लेना अंतःकरण हो गया जीव का और ईश्वर का स्वयं माया उपाधि है श्रुतिर माया अविद्याधीनयोः चिदाभासयोः मायिकत्वं प्रतिपादयति इति भावः। भगवती श्रुति माया और अविद्या के अधीन चिदाभास और ईश्वर दोनों का प्रतिपादन करती। चिदाभासयोर मायिकत्वम, मायिक है ये बात यहां बता रही है, दोनों मायिक हैं। मायिकत्वे तयोर देहादिभ्यो वैलक्षण्यम न शारित्याशंक्य। अब यह शंका कर रहे, जब आप कहते कि ईश्वर भी मायिक है, जीव भी मायिक है, दोनों मायाकृत हैं। मायाकृत का मतलब माया उपाधि वाले हैं। उसी माया का छोटा सा कार्य अंतःकरण हो गया और माया बड़ी हो गई। तो दोनों जब मायिक हैं तो फिर विलक्षणता कैसे आई? देहादिभ्यो वैलक्षण्य, विलक्षणता नहीं होना चाहिए, ऐसी आशंका किया। तब उत्तर दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं। पार्थिवत्व अविशेषेपि काच कुंभस्य घटादिभ्यो वैलक्षण्यम अनयोरपि शारित्या। अच्छा उत्तर दे दिया, दोनों पार्थिव है, कांच भी और घड़ा भी। पृथ्वी तत्व से कांच भी बना, ग्रेनाइट भी, पत्थर भी और घड़ा भी। पर जो घड़ा है ना, घड़ा थोड़ा मलिन होने से उसमें चमक दमक नहीं है, और कांच में, ग्रेनाइट पत्थर में जो है ना, शुद्ध होने से इसमें चमक है। इतना अंतर यहां पर है। ये जगत भी मायिक है, ईश्वर भी, जीव भी, पर दोनों की उपाधि स्वच्छ है, इसलिए प्रतिबिंब भाषित हो रहा, चेतनता भाषित हो रही। और जड़ जगत में चेतनता होने पर भी अस्वच्छ उपाधि होने से भाषित नहीं हो रही। दोनों में इतना ही अंतर है, कांच का घड़ा और मिट्टी घड़े का अंतर बताया। घटा दिव्यो वैलक्षण्यम इव अनियो स्यात् इत्याह स्वच्छ इति। ननु घट काज कुंभा आरंभकयोर मृद विशेषयोर भेदात तद वैलक्षण्यम उचितम जगत जीव ईश्वर भेद हेतुर मायाया एकत्वात तयोर जगतो वैलक्षण्यम अनुचितम इत्याशंक्याः। पूर्व पक्षी ने कहा कि महाराज आपने जो बात कही ना, वो गले में उतरता नहीं। क्यों? यहां तो अलग अलग है, मिट्टी उपादान कारण है घड़े का, और कांच की धातु अलग है, ग्रेनाइट धातु अलग है, अलग अलग है ना सब। जो ग्रेनाइट की दीवार है वो चमकीला पत्थर है, कांच अलग है, मिट्टी अलग है। तो तीनों उपादान कारण के भिन्न भिन्न होने से यहां तो बात बन जाएगी, एक स्वच्छ एक अस्वच्छ है। पर यहां पर दो उपादान कारण एक है माया, उसी माया से जगत बना, उसी से ईश्वर बना, उसी से जीव बना, तो आप कैसे भेद कर पाएंगे? ये शंका किया पूर्व पक्ष ने। तब उत्तर दे रहे हैं, अन्नजन्यो देह मनसोर यथा वैलक्षण्यम तद्वत इत्याह। बिल्कुल एक सरल दृष्टांत दे रहे, जैसे कि अन्नजन्य हमारा शरीर भी है, मन भी है, अन्न है ना, एक ही अन्न से बना हमारा शरीर, उसी से इंद्रियां, उसी से मन। एक ही उपादान कारण अन्न होने पर भी दोनों में अंतर आ गया। मन आपका स्वच्छ है, तीव्रगामी, शरीर आपका स्थूल है, दोनों मंत्र आ गया है। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है ना, जहां पर ये श्रुति है अन्नमयमि सौम्य मनः, ये मन हमारा अन्नमय है। आपोमयी क्या है? प्राण। तेजोमयी वाक, वाणी को तीव्र करने वाले तैल घृत का पान करते हैं, यज्ञ याग में देखा गया है। जो यज्ञ में ब्राह्मण वेद ध्वनि करते, वेद पाठ, गरम तेल और घृत के पान का विधान है। और प्राण आपोमय है, जल पीते रहेंगे तो प्राण की क्षति नहीं होगी और जल ना पियो तो लगता प्राण सूख गया। इसीलिए ये प्राचीन परंपरा ना, कोई बेहोश हो गया तो तुरंत पानी पिलाते, पानी का छींटा मारते कि प्राण कम से कम न जाए। और अन्नमय आपका शरीर है और मन। जब अन्न खाते हैं, अन्न का तीन भाग होता है, स्थूल भाग तो मल मूत्र रूप से बाहर निकल जाता, मध्यम भाग से मेद मांस रक्त आदि का निर्माण होता और सूक्ष्म भाग से मन का पोषण होता। ऐसा जो है इस प्रकार की व्यवस्था है। तो देखो एक ही अन्न से मन भी बना और शरीर भी, तो दोनों में बड़ा भारी अंतर है। मन आपका जरा स्वच्छ है, शरीर आपका अस्वच्छ है। ऐसे यहां पर भी एक ही माया से जगत बना, जीव ईश्वर बने, तो दोनों में अंतर है, ये बता रहे श्लोक से बता रहे। अन्न जन्यम मनो देहात् स्वच्छम यद्वत् तथैव तौ मायिकावति सर्वस्मात् अन्यस्मा स्वच्छताम गतौ। अन्न जन्यम मनो देहात् स्वच्छम यद्वत् तथैव तौ मायिकावपि सर्वस्मात् अन्यस्मा स्वच्छताम गतौ। अन्न जन्यम मनो, अन्न से जन्य है आपका मन और देह, फिर भी देह से स्वच्छ है आपका मन, शुद्ध है मन, बुद्धि, अंतःकरण। तथै वैसे ही मायिकावपि, मायिक होने पर भी सर्वस्मात् अन्यस्मात् एक पद है, जितना भी संसार जगत है उन सब से ईश्वर और जीव विलक्षण है, मतलब स्वच्छ है, पवित्र है। दोनों में अंतर दिखला दिया। भवतु काचादिव स्वच्छत्वम चित्तम तु कुत इत्याशंक अनुभवाद इत्याह। कहते ठीक है, कांच के समान स्वच्छ हो जाए आपका ईश्वर और जीव, फिर भी ये जो चित्त है कैसे इस प्रकार का हुआ, ऐसी आशंका करने पर बता रहे कि चित्त क्या है। चित्त के विषय में है इसी जगत में शरीर भी बुद्धि भी, परंतु दोनों में अंतर हो गया। ऐसे यहां पर इसी जगत में सब है, पर जो साधना करता परमात्मा जी का संबंध हो गया, जिसकी मनोवृत्ति परमात्मा में लग गई, अब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध अंतःकरण में आनंद ज्ञान चेतन की स्फुरणा होती है और अशुद्ध अंतःकरण में कामना वासना विषय के प्रति भागता रहता है। है तो वही एक ही आदमी। अब एक ही गाय है, गाय की स्तन में दूध है, परंतु दूध किसको मिलता है, ग्वाले को, जो दूध निकालता है, बछड़े को या खरीद कर पीते हैं। स्तन के बिल्कुल नजदीक में सटा हुआ एक कील होता है, इसको कील कीड़ा बोलते, उसको दूध नहीं मिलता, क्या मिलता है उसको, खून मिलता। ऐसे ही आप किसी शरीर में जीव साक्षी भी है, जीव भी है, दोनों जीव साक्षी और जीव है। तो जीव तो वो कील के समान चिपका हुआ है, कील मतलब कि स्तन में जो कीड़ा होता है ना गाय के स्तन, उसको कील बोलते संस्कृत में, हिंदी में किलनी बोलते शायद, किलनी काला काला होता है जो खून पीता है। तो जीव तो चिपका हुआ है कील की तरह से, बेचारा सुखी दुखी होता है, उसको खून के समान दुख मिलता है। परंतु जो जीव साक्षी है कुटस्थ, वो असंग है, उसको दुग्ध अमृत ज्ञान में वह डूबा हुआ है। यदि आप कुटस्थ भाव को उपलब्ध हो जाएंगे तब तो आनंद। और इसी शरीर में अंतःकरण में जीव भाव में रहेंगे तो हमेशा संसार का दुख उपलब्ध होता रहता है कि हम संसारी में मरने वाला या जन्मने वाला, ऐसा दुख का अनुभव होता है। वही बता रहे अब, उच्चारण हो गया कि नहीं है? नहीं हुआ। चिद रूपत्वम संभाव्यम चित्ते नैव प्रकाशनात् सर्वकल्पन सक्ताया मायाया दुष्करम नहि चिद्रूपत्वं च संभाव्यम् चित्ते नैव प्रकाशनात् सर्वकल्पन सक्ताया मायाया दुष्करम नहि। बहुत अच्छा उत्तर दिया कि माया के लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है, माया सब कुछ कर सकती। इसलिए माया का लक्षण किया अघटित घटना पटी सी माया, अघटित घटना कुछ भी माया कर सकती है। हम लोग हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, माया है। जो हमारे इंद्रियों के परोक्ष होता है उस चीज, उस घटना को देखकर हम चौंक जाते, हैरान हो जाते। अब आप देखिए मोबाइल है, ये थोड़ा बहुत चमत्कार थोड़ा है। कल्पना कीजिए कहां आप यहां बैठे बंद कमरे में, हजारों कुछ दूर की बात सुन लेते, देख लेते, अच्छी तरह बातें होती कि नहीं। ये भी तो एक माया ही है, चमत्कार ही है। जब आदमी हजारों कोष से एक क्षण में संपर्क स्थापित कर लेता है, मान लो कभी ये सब आविष्कार किसी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो आज हम अनुभव कर रहे हैं ना, मोबाइल का, यंत्र का, इन बातों का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या फालतू बात करता, क्या कहां बंबई, कहां अमेरिका से कैसे एक क्षण में बात हो जाएगी। भाई लो नहीं मानेंगे, अभी तो किसी को शंका नहीं हो रही है, बिल्कुल शंका नहीं, संशय नहीं होता था ना। लोग शंका करें कहां अमेरिका, उससे कैसे बात हो जाएगी, एक क्षण में कैसे जो है उस वहां से रूप को देख लेंगे। लोग भरोसा नहीं करेंगे, अभी तो किसी को संशय नहीं। इसी का नाम माया। अब कल्पना करो माया ने कितना बड़ा चमत्कार खड़ा कर दिया। आप बैठे बैठे दूर की बात देख लेते, सुन लेते, संपर्क स्थापित हो जाता हजारों कोश से। ऐसे ही प्राचीन काल में, या जो महाभारत में आप कथा सुनते हैं कि संजय घर बैठे सारी घटना आंख से देख लेते थे और देख वैसे वैसे बता दिए। अब किसी को संशय नहीं होगा। शिव पुराण में कथा आती ना कि भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए थे और रावण पहुंचा, जैसे कैलाश को उठाया तो भगवान शंकर ने पैर के अंगूठे को दबाया। शिव में मन में श्लोक आता ना, सिर के अंगूठे, वो सीधा पाताल लोक पहुंच गया। वहां पहुंच गया तो बलि महाराज उसको पकड़ के छह महीना तक कहां कंधे में दबा लिए, फिर घुड़साल में बांध दिए तो बच्चे खेलते रहे। इसी में मैंने भी कथा आती है। देखो ये आश्चर्य की बात नहीं, जब भाई सामान्य आदमी इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है तो भगवान शंकर हैं जो देवाधिदेव महादेव हैं, उन्होंने अंगूठे से मान लो दबाया और पहुंच गया पाताल, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है। पहले लोगों को संशय होता था, अब संशय नहीं होता कि हो सकता है, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। इसी का नाम माया। तो माया अघटित घटना पटिय सी माया, घटित घटना को भी माया जो है ना रच देती है। चिद रूपत्वम संभाव्यम चेतन रूप है, स्वयं प्रकाश रूप से भाषित होता है, सभी कल्पना में सक्त मतलब समर्थ है। कौन? माया। माया दुष्कर्म नहीं, माया को कुछ भी दुष्कर नहीं है। माया मतलब ईश्वर के संकल्प शक्ति को माया बोलते हैं। ईश्वर है ना, ईश्वर के संकल्प शक्ति, या ईश्वर सब कहना ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म, उसके संकल्प शक्ति को माया कहते हैं। और वही माया फिर ये जीव और ईश्वर को बनाती है। चिद रूपत्वेन प्रकाशनमपि मायिकयो अनुपन्नम इति आशंक्य तस्या दुर्घटकारित्वाद उपन्नम इत्याह। चिद रूपत्वेन सब कुछ प्रकाशन करती है माया, अनुपन्न मतलब सिद्ध कुछ भी नहीं है, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दिया कि माया कुछ भी बनाने में सख्त है, समर्थ है, उसके लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है। अब इसी बात को दृष्टांत देके समझा रहे तीर्थ श्लोक से, उक्तमर्थम कैमोतिक न्याय न दृढ़यति। कैमोतिक न्याय से, कैमोतिक न्याय बोलते हैं कि जब इनका पुत्र नौकर इतना बढ़िया है तो मालिक के विषय में क्या कहना, इसका नाम है कैमोतिक न्याय। अस्मन् निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजे महामाया सृजत्येतौ इत्याश्चर्यं किमत्रते। अस्मन् निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत महामाया सृजत्येतौ इत्याश्चर्यं किमत्रते। अब अच्छा दृष्टांत दिया कि हमारी निद्रा जब आप रात को सो जाते ना, रात को सो जाते, सोने के बाद निद्रा दोष के द्वारा आप ईश्वर को बना लेते। सारे भगवान देख नहीं, बद्री विशाल भगवान को देखते हैं, भगवान शंकर को देखते हैं, सपना में देखते हैं कि नहीं, सब देखते हैं मजे से। इतना ही नहीं, समुद्र को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, सिंह बाघ को देखते हैं। तो आप सोने के बाद उस समय कोई औजार आपके हाथ में नहीं, मात्र निद्रा है। निद्रा तो निद्रा के द्वारा आपने ईश्वर को बना लिया, जीव को बना लिया, दुनिया भर के समान बना लिए। और आने के बाद क्या करते, सबका विलय कर देते, कुछ भी नहीं आंख खुलने के बाद। जब आपके निद्रा में इतना बड़ा भारी सामर्थ्य चमत्कार है कि वह निद्रा ईश्वर को बना लेती, रात भर में जगत को बना लेती, सारी सामग्री बना लेती, और आते समय वहीं पर विलय कर डालती, तो महामाया क्यों नहीं बना सकती, संभव है। वह लिख रहे अस्मन निद्रा, हमारी निद्रा भी जीवेशो, जीव ईश्वर को जो दोनों चेतन होते हैं, स्वप्न गौ स्वप्नावस्था में श्रीजेत सर्जन कर लेती है। सपना में वो बद्री विशाल भगवान यहां थोड़ी इतना जल्दी आ जाएंगे, परंतु आप सर्जन कर लेते, सब अपनी कल्पना से सब कुछ बना लेते हैं। और जब आते हैं तो सबका उपसंहार कर लेते। ऐसी महामाया सृजति एतो, जीव ईश्वर को बनाती है। आश्चर्य किमत ते, आपको इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो अज्ञानी जीव को होता है, वास्तव में ठीक से वेदांत हृदयंगम हो जाए तो मनुष्य की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सारी समस्या। जब आप सपने में जीव ईश्वर बना सकते हैं, वो भी मात्र निद्रा की सहायता से, तो जागृत में जो महामाया है, यह महामाया जीव ईश्वर को बना लेती है। पर जीव ईश्वर को बनाने के बावजूद भी उसमें एक ही दोष है कि माया के कारण से आनंद नहीं मिलता आपको। सत चित आनंद, इसको आप न बना सकते न बिगाड़ सकते, सीधी बात है। शास्त्र का नियम है यत कृतकम तद अनित्यम की व्याप्ति है। जो भी कृतक होगा पक्की बात अनित्य, शाश्वत नियम है, सनातन नियम है। जो भी कुछ बनेगा पक्की बात है बिगड़ेगा मिटेगा, यह अकाट्य ध्रुव सत्य है। इस सपने में आपने सब बना लिया, जगने के बाद सब मिट गया। ऐसे जागृत में जो भी कुछ हम बनाएंगे वह बना हुआ चीज एक न एक दिन काल से वह समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। पर जो सच्चित आनंद है वो उसको न माया बना सकती है न निद्रा बना सकती, वह आपका अपना स्वरूप है। सच्चित आनंद को आपको बनाना नहीं केवल समझना है। जैसे कि रस्सी में सांप की भ्रांति है, जब तक सांप की भ्रांति तब तक आप परेशान है, दुखी रहते। जैसे आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद सांप कहीं भगता है कि मरता है, क्या होता है, है? था ही नहीं, सीधी बात, केवल भाषित हो रहा था। ऐसे ज्ञान होने पर आपको सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्मी ब्रह्म की अनुभूति होती है। सिया राम में सब जग जाना, सर्वत्र आनंद की प्रतीति होगी। उसके ऊपर जो आरोप था ना जगत का, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी थी, रस्सी के ऊपर भ्रांति से सर्पत्व का आरोप था। रोशनी आने के बाद सर्पत्व कबाद हो गया। ऐसे यहां पर हमारे जीवन में जो संसारीपना का आरोप है, मैं संसारी हूं, मैं जन्मने वाला, मैं मरने वाला, हाय हमारे उम्र 60 हो गई, 70 हो गई, अब क्या पता कब टिकट कट जाए, होता करें, ये मानसिक चिंतन होता है। तो वास्तव में आप 60-70 के नहीं हुई, ये तो शरीर हुआ। आप तो बिल्कुल नित्य हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद है। परंतु हमने यहां पर सांप के समान शारीरिक धर्मों का आरोप कर लिया आत्मा के ऊपर। जो शरीर का धर्म है, जन्मना मरना, इन धर्मों का आरोप कर लिया किसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। आत्मा तक पहुंच जाएं तो आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे। उपनिषद मंत्र आता है, अहर अहर इमा सर्वा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति न बिंदन्ति अनृतेन ही प्रत्युढ़ा। बस इतनी कमी हमारी है। प्रत्येक प्राणी सुषुप्ति अवस्था में प्रत्येक दिन अपने स्वरूप के साथ तादात में होते हैं, तादात में। अभी आप 4 घंटे पहले स्वरूप में थे, एकदम स्वरूप में, आनंद रूप, परंतु जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, न बिंदंती, जान नहीं पाते, लाभ नहीं उठा पाते। अनृते नहीं प्रत्युढ़ा, अनृत से आपका मुखारबिंद ढका हुआ, जैसे रात को समुद्र में कोई घड़ा डाल दिया जाए, घड़े के मुख को ढक्कन से ठीक से बंद कर दे तो घड़े में ताजगी आ जाएगी, ताजगी सफाई चमकीलापन आएगा, फ्रेश होगा घड़ा जब बाहर निकालेगा रस्सी से तो। परंतु घड़े का जो मुख है वह ढक्कन से फेविको लगा के बंद कर दिया आपने तो एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग हैं। सुषुप्ति में आप हर हर इमा सर्वा प्रजा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, ब्रह्मलोकम का अर्थ है ब्रह्मैव लोक ब्रह्म लोक, ब्रह्म स्वरूप को तादात रूप से अनुभव करते। परंतु अनृत मतलब की अविद्या, असत्य वासना से आपका जो विवेक था वह आच्छादित है। जैसे कपड़े से आप भगवान के मंदिर को ढक देते हैं ना, तो दिखाई नहीं पड़ते भगवान। ऐसे अनृत मल्ल न रीतम अनृतम, अनृत के द्वारा सत्य के द्वारा जो विवेक है बुद्धि आच्छादित रहती है, इसीलिए हमें तत्व का अनुभव नहीं हो पाता है। जिस दिन वह अनृत रूपी जो आच्छादन है वह दूर हो जाएगा, विवेक के द्वारा उचित अपने आप अपने स्वरूप का सच्चित आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। तो अनुभव तो प्रत्येक दिन करते, परंतु विवेक नहीं हो पाता क्योंकि अनित से आच्छादित है। तो आपको निश्चय करना कि मैं कौन हूं, शरीर की आत्मा, एक निर्णय करना आत्मा हूं, सीधी बात है। जब रोज रोज निर्णय करें ना आत्मा हूं सच्चिदानंद हूं, तो रोज रोज बोलते 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 एक दिन पक्का हो जाएगा कि मैं शिवहम सच्चिदानंदोहम। ऐसा होने के बाद यह जो अनात्मा है ना, अनात्मा का आवरण भंग हो जाएगा। ये मिटने वाला नहीं है परंतु भंग हो जाएगा। इसका नाम है सोपाधिक भ्रांति। सोपाधिक भ्रांति जानते हैं ना, भ्रांति दो होती, सोपाधिक निरुपाधिक। तो सोपाधिक में जब तक उपाधि रहेगी तब तक विषय मिटता नहीं है, सत्यत्व का बाद केवल होता है। जैसे आकाश में नीलिमा है, कढ़ाई की तरह उल्टा आकाश जो है ना रखा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। तो ज्ञान होने पर भी कि भाई आकाश में नीलिमा नहीं है, तो कढ़ाई की तरह आकाश गोलमटोल नहीं है, ऐसा ज्ञान होने के बावजूद भी दिखाई पड़ेगा नीला ही। पर सत्यत्व बुद्धि का बाध हो गया कि भाई आकाश नीला नहीं होता है, गोलमटोल नहीं होता है। ऐसे ही आपको बोध तो हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। पर बोध होने पर भी इस शरीर आदि उपाधि है विषय, ये विषय मिटते नहीं है, प्रारब्ध तक ये विषय आपके चलते रहेंगे। पर बोध हो जाएगा, इतना ही अंतर है दोनों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।